مطابق کام کرنے کے لیے. تو آرام کا بھی کسی طرح سے سمجھیے. پردھان کارن کیا ہے؟ یہ تو گون کارن ہوگا. پردھان کارن ہے جی ماتر ہی بھگوان کا نشچے دارتھ ہے سوروپ سے. سب کا پتا جس سے میں ایسا کوئی بھی جیو نہیں ہے جو سروپ کا بھگوان کا دارتھ ہے. جیو سوروپ ہے نشچے کرشن دارتھ. کیوں؟ ممبئی جان تو جیو لوگوں کے جیو بھوتا سناتنا. یہ جیو ہمارا ہی انت ہے. انت چھوٹا ہونے کے کارن پرمانند ہونے کے کارن بھگوان کو بھول سکتا ہے. جیسے سمندر میں سمندر ہے وشال پانی کا سا بھنڈار کوئی چوٹ نہیں ہے. اور ایک پرمانند ہے جو کا پرمانند تو آپ طرف سے ہی جل جائے گا پرمانند. اور آپ کتنے بھی دھیان کر ہو اور سمندر کا پانی اس پر جب پورا ہے تو سب کو بتا دے گا. کرشن اور مایا کا پربھاؤ نہیں ہوتا کیونکہ جی انو پرمانو ہے بھگوان. کیونکہ انو پرمانو ہم جس روپ میں کاٹتے ہیں اس روپ میں نہیں ہے. جیسے ایک کاغذ کو کاٹ دیا ٹکڑا تو اس کا ٹکڑا ہو گیا اور کاغذ سلکتے ہیں. ایسا نہیں بھگوان کا ایسا ٹکڑا نہیں ہوتا. انہوں نے من ہی من میں سنکلپ کیا اور سنکلپ کرنے کے ساتھ ہی ساتھ ان کی شکتی جو جیو شکتی ہے وہ جیو کے روپ میں بنی ہے. ان کی کس شکتی انت کو بھی برہم کس جگت کے روپ میں پرکشت ہو گئی. ان کی جڑا شکتی انت کو بھی برہمانڈ کے روپ میں پرکشت ہو گئی. پربھو جیسے ہیں ویسے ان کا انت کوئی اس طرح سے نہیں ہوا. جیسے کسی گواکش میں گھر کے کسی ہول سے وینٹیلیٹر سے خود کی کرنیں آ رہی ہیں اور اس میں ٹک 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 کرنے والے بہت سے پرمانو ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں وہ ایسا وہ کرن آتی ہے. جب سے سوجھے تب سے وہ ہے. سوچے نکلتی نہیں ہے کیونکہ سوجھے سے ہی ہے. سوجھے نہیں رہنے سے اس کا کچھ تو نہیں رہے گا. اس لیے بھگوان سے کوئی جیو پیدا ہوا ایسا نہیں. بھگوان جب سے ہے تب سے جیو کا بھی استھ ہے کیونکہ ان کا سروپ ہے بھگوان کا سیوا کرنا. جب تک وہ بھگوان کی سیوا نہیں کریں گے تب تک اسپیڈ نہیں ہو سکتے ہیں. ان کو سکھ اور شانتی نہیں ہو سکتی. اس لیے ہم لوگ جب سے ہیں تبھی سے بھگوان کو کھلے ہوئے ہیں. اس لیے بھگوان بڑے دکھی ہوتے ہیں. ہمارا یہ جیو سب کو کہاں آنند میں اور ہمارا دار کہاں ہماری سیوا کر کے کن آنند کا اپیوگ کرتا ہے اور ہمیں یہ بھول کر کے مایا میں گھوم رہا ہے اور جو نہیں ہے اس کو وہی مانتا ہے. ہمارا جیسا ہی کوئی آسنا کوئی آسنا تو کوئی پور سری دے دیا وہ استری کا اور کوئی کو دے دیا پورش کا شریر وہ پرسپر سمجھ رہے کہ یہ میری پتنی ہے یہ میں اس کا پتی ہوں. سوروں میں بھی ایسے گدھوں میں بھی ایسے پرانیوں میں بھی ایسے برکشوں میں بھی ایسے ہی سب جو ہے کسی پرکار سے بھگوان کو چھوڑ کر کے ان کا جو پریم ہے سکھ ہے وہ تو بھول نہیں سکتے. انہیں چیزوں میں وہ سکھ بولتے ہیں. آج سے نہیں جب سے سکھ کی پہلی سے بھی تب سے ہم لوگ ان روٹیشن گھوم رہے ہیں. کتنے بار دیوتا ہوئے کتنے بار برہما ہو سکیں گے کتنے بار پشو پکش کی پتنگ سور گدے گھوڑے منشیہ ہو رہے ہیں اور چل رہے ہیں. بھگوان چلے ملے نہیں بہت سے جیو ایسے ہیں تو بھاگوان مل گئے. ہم لوگ ان میں سے دربھاگا جی ہیں جو آج تک ہم لوگوں کو کرشن سے کسی پرکار کا سمبندھ نہیں ہوا. اس جنم میں تھوڑا سا سمبندھ ہونے کا چانس ورنداون کے پاس ہی भारत वर्ष के अंदर में गंगा जमुना के साथ में जन्म लिया भगवान ने। अपने परिकर साधु संतों को भी बीच बीच में भगवान भेजते हैं और उनसे भी जब नहीं होता है तो खुद वो उतरते हैं और ऐसी मनोहर करुणाजनक लीलाओं को करते हैं। जो देखा वो तो कर ही गया, जो नहीं देखा करा उस कथा को युद्ध सुन करके जिनका चित्र थोड़ा सा भी द्रवित हो गया वो पास हो जाए। इसलिए ऐसी मनोहारी अद्भुत करुणामयी मधुर लीलाओं को वो प्रकट करते हैं। वो लीला इस जगत की नहीं है, उस लीला को वहीं से उस भूमि के साथ में लेकर के अवतरित होते हैं, इसलिए उसका नाम है अवतार, उतरते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ पर लीला नहीं है और नया लीला आरम्भ किया, ऐसी नहीं, जो वहाँ पर लीला है उसी को उतारते हैं। जैसे कोई अभिनय पार्टी बनारस से आई रामलीला का अभिनय करने के लिए, अपनी पूरी पार्टी को वहीं से ले आते हैं और फिर यह उतारते हैं और पहले से उनकी अब उनका अभ्यास है उस लीला को करने का। उसी प्रकार से ये पूरी पार्टी जो भगवान की उतरती है अपनी पूरी पार्टी के साथ, जब कृष्ण आते हैं तो कृष्ण के परिकर, राम आते हैं अपने परिकरों को लेकर के, बड़ा देव चैतन्य महाप्रभु अपनी अपनी पूरी पार्टी के साथ में बोलू उतारते हैं। इसलिए कभी कभी जन्मों से कल्पों से जन्मों से हमें ये जीव भूख करके दुख पा रहे हैं, हमारे हैं जैसे भी मेरे हैं। जैसे पिता का एक पुत्र बाधित हो गया, बहस बन गया और लोगों को मार काट रहा है और पुलिस के मारे डरते इधर उधर भाग भी रहा है, बड़ा दुख पा रहा है, वन जंगल में घूम रहा है, पिता का हृदय दुखी हो गया। पिता की अच्छी सोबा बना करके ये अच्छा हो गया, फिर हमारे पास में आ जाए, इसके लिए तो हमारे घर में पूरी संपत्ति है, इसी के लिए ही तो उत्तराधिकारी था, अब ये मारा मारा फेंक रहा है, इसकी बुद्धि सुधार जाए। इसी प्रकार से भगवान जीवों का यह जो दशा देकर के अपने परिकरों के साथ में उतारते हैं, ये मूल कारण है। इसके साथ साथ में कुछ गौण कारण भी बन जाते हैं, वही गौण कारण ये पृथ्वी का दुख हर हर जगत में धर्म की का प्रचार, ये सब गौण कारण, मूल कारण नहीं है। रामचंद्र जी के संबंध में हमने सवेरे या का बदलाया था ना, ये प्रदर्शन शाम को बदलाया, तो हमें बतलाया कि किस प्रकार से नर्क को मोह हो, उन्होंने सोचा कि हमने कामदेव को परास्त कर दिया, जीत लिया, ब्रह्मा हमारे पिता नहीं जीत सके, हमारे गुरु शंकर जी नहीं जीत सके, शंकर जी अपने क्रोध को नहीं जीत सके और उस कामदेव को जला दिया और ये तपस्या करने बैठे तो देवताओं ने डर करके सुंदरता मिनती मिनता इत्यादि को भेजा, किंतु यह हट करते बोले ये तुम लोग जाओ, तुम हमारा कुछ बिगाड़ नहीं कर, किंतु कुछ तो भी नहीं हुआ, काम का उद्रेक ही नहीं हुआ, उनको अभिमान हो गया कि मैंने काम को जीत लिया। शंकर जी से कहा, ब्रह्मा जी से कहा, फिर विष्णु से जाकर के बोले आपकी कृपा से मैंने काम को जय कर लिया, तुमने जय कर लिया, यह अपमान कटिया है। उनको वहां कटिया का व्यवस्था साथ में माया था, एक पूरी बेटी और उस माया में राजा को एक लड़की 16-17 वर्ष की परम सुंदरी परम गुणी रूपवती सब एक गुणी थी, सिंह रेखाएं वैसे ही नर जी वैष्णव दुर्शन के उतरे और ठीक उसी जगह में पहुंचे। एकदम नया राज्य राजा और राजधानी पक्षांडव के आदि का बचा हुआ, उन्होंने तो तब करके राजा को देखा, राजा ने प्रणाम किया कि हमारी लड़की का कल स्वयंवर है, अब जरा हाथ तो देखे जी कहता हाथ है, उस लड़की को देकर के मुग्ध हो गए। हाँ देखा जिसको ब्रह्मांड में ये सबसे अधिक बुद्धिमान बलवान होगा, गुणवान होगा, रूपवान होगा, जो अजर अमर है उससे इसकी शादी हुई। जैसे तो मैं यदि इसे शादी कर लूं तो मैं ही अजर अमर बन जाऊं, सबसे बुद्धिमान और बलवान बन जाऊं। कल अभी जीत करके माया को आया और आज अभिमान होने से भगवान ने ऐसी थे जैसे हमारी माया को जीत लेगा तुम, ये मेरी माया न माया दुर्दृश्य माम एक ये प्रपतन थे मायाम के दाम कर, ये माया मेरी है तू जीत लेगा, ऐसा तो अभिमान नहीं है। वैष्णव लोग जीन ही और भक्त लोग जीन ही होते हैं। जिनका चीज की समाप्त हो गई हो गया अभिमान, किसी प्रकार का अभिमान उचित नहीं है भक्त के। मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, विद्वान हूँ, धनवान हूँ, किसी चीज का अभिमान नहीं करने के, वो है तो नहीं, वो तो शरीर ये अलग से है, आत्मा का तो ये सब जरूर नहीं है। मेरी स्त्री बड़ी सुंदरी है, कब से तुम्हारी स्त्री हुई, अभी भी तुम्हारी स्त्री, वो तो आत्मा है, तुमने स्त्री बना दिया, ये तुम्हारा अविवेक है, विभिन्नता है, अज्ञानता है। ये मेरा बेटा है, ये भी अभिमान, सभी अभिमान के ऊपर में चला। तुम्हें हमारे भक्तों का ऐसा अभिमान हो गया, बस शादी साथ ऑपरेशन करके इसको दूर करना है। साथ ही साथ ये माया की नगरी, माया की पूरी, माया की लड़की, माया का राजा सब बना करके एक मंत्री ऐप बनने सुने हो गया। हाथ देकर के बड़ी जैसे ये तो मुख में पानी भर आ जाएगी, मेरी यदि पत्नी हो जाती तो मैं तो ऐसा ही हो जाता, माया चढ़ बैठी। तो मैंने सोचा कि अब कैसे इस लड़की को हासिल किया जाए। वो वहां से उठ करके चले गए दूर में और निश्चिंत स्थान में, निश्चिंत स्थान में प्रभु का स्मरण कर। तो आज तक मैंने आपसे कोई भी आवेदन निवेदन प्रार्थना मैंने नहीं की, प्रभु तो आज मेरे ऊपर में एक ऐसी भावना आई, आज मेरी इच्छा को पूर्ण कर दें, आप मुझे अत्यंत सुंदर रूप दीजिए, आप हमसे जैसा आप किसी का रूप नहीं वही रूप हमको चाहिए, आज उधार ले रहा हूं कल उसको दे दूंगा जब हमारा काम हो जाएगा। प्रभु भगत हुए, मुस्कुरा करके बोली कि क्या बात है, किसलिए हमको मिला है। प्रभु आपको सब अंतर ज्ञान ही आप सब जानते हैं, अपना रूप सड़े समय के लिए हमको दिए, क्या बात क्या है, एक बड़ी सुंदर लड़की है उसकी तो मेरी शादी हो जाती, गरीब समझना आज तक नहीं हुई थी, आप कृपा करके ये पूरी कर, ठीक है तुम्हारा मंगल होगा, ऐसा काम करूंगा कल्याण में। उन्होंने ये नहीं कहा कि दूंगा लूंगा, ये कुछ नहीं, तुम्हारा कल्याण नाते समय हमारा तो कल्याण इसी में है कि हमको वो लड़की मिल जाए। हम लोग ऐसा ही सोचते हैं, धन पुत्र परिवार राज्य प्रतिष्ठा इत्यादि क्या है, नहीं जानते हैं कि ये आप अनर्थ पैदा करेगा, ये प्रतिष्ठा अनर्थ पैदा करेगा, हम नहीं समझ पाते हैं। इसलिए नारद जी ने बड़े खुश हो गए, भगवान से चले गए। अब ये दूसरे दिन राजसभा में पहुंचे जहां से संपर्क हो रहा था, देश देश के वो भी नकली भगवान ने माया थी, देश विदेश के पर सुंदर से सुंदर नवयुवक राजा राजकुमार वहां पर उपस्थित और बड़ी खुशी हो रही थी। हर लड़की को सुंदर माला लेकर के और अपने पति को ढूंढने के लिए ये बरमाला बनाई गई, उसकी शादी होगी घूम रहे, उसको देखकर के जितने लोग थे वो चुप लोग थे। नारद जी का अब होश नहीं रहा, वो उसके जैसे बन गए, लोक लज्जा भी नहीं गई, ये लोग क्या कहेंगे हम ऐसा कर रहे हैं। वो समझा जैसे आज भगवान परम मंगल में है, हमारी इच्छा पूर्ण होगी, उन्होंने अपना रूप दे दिया है। वो सामने जाकर के खड़े हो गए, सोचा जी ये वरमाला आप देखते देखते ही हमको पहनाएगी। वो इधर आई तो देखा और देखकर के मुख फिरा दिया दूसरी तरफ मुझे, अरे भूल गई हमारे तरफ में शायद नहीं देखा हो, उधर से फिर उधर से नहीं देखी तो ये और आगे से फिर उधर जिधर जब आए गरीबर और शंकर जी के दो दूर, वाह वाह क्या कमाल है, कितना सुंदर अद्भुत। राम जी कहते हैं ये सब कुछ के लिए कह रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं।
अच्छा, अब यदि वो देख ले कि हमारे तरफ में एक बार भी देखे तो फिर हिमाला दूसरी जगह में जाएगी, हमारे गले में ही आएगी। बात आप चिंता करके कुछ नहीं है, और वो वहां से माला से चिंतन कर रही है, ब्रह्मा हमारे जुड़के नहीं, शंकर जी हमारे जुड़के नहीं, चिंता रही वैसा है शंकर। ये मुंड मालों मुंड की माला पहनते हैं, सरसों की माला पहनते हैं, जगत का ध्वंस करते हैं, ब्रह्मा से नहीं इंद्र से। वो तो उसमें जितना पाखंड भी भरा पड़ा है, भगवान से कोई संबंध नहीं उसका। और ऐसे करते करते में इतने में गरुड़ पर बैठे हुए शंख चक्र गदा पद्म जो है वही नाथ जी के आराध्य जी वहां पर पहुंच गए। लड़की से करके बड़ी प्रसन्न हो और उनके गले में माला दे दी। उन्होंने लड़के को उठाया और उधर गरुड़ पर बैठा और घर करते बैठे थे। नाथ जी बड़े शुभ हुए, बड़े दुखी हुए, दुख थी हमारे सामने में, और मैं कब से कितना आतुर हो रहा हूं, दुखी हूं, और हमारे सामने उसकी लड़की को लेकर के चले गए। उनको पास दूर आता होगा हॉस्पिटल, ऊपर इनका कोई नहीं है ना पीछे वाला, उनको कोई शासन करने वाला आज तक नहीं मिला। आज मैं शासन करके इनको दिखा दूंगा कि हाँ मैं कौन हूं, मैं भी नारद हूं। जो जिस लड़की को के लिए मैं सुख प्रसार हो रहा था, अभी बड़ा विरह में सख्त हूं, उसी लड़की के साथ तुम तुम्हारी शादी तुम चले गया, उसी के लिए तुम विरह में तरसेगा और उसको दूसरे चुरा ले जाएंगे, इस समय दम करने शुरू होगा। और ये जो शंकर जी के और मेरा जो रूप बंदर जैसा उन्होंने देखा ऐने में या किसी पानी में, ये मेरा रूप हो गया है। बंदर जैसे लंगूर होते हैं काला, नाक जैसी काला मुख, पानी में देखकर के शुभ हो गए और हमको ऐसा बंदर का मुख दिया। जाओ यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे तुम्हारी भाग्या मिलने में, और जही अभी संपा दिया वही से मैंने भगवान लक्ष्मी जी लेकर के उसी स्त्री को लेकर के उसके सामने माया को हटा दिया। माया हट ये तो हमारी आराध्या देवी, ये तो वो स्त्री दूसरी नहीं, ये तो हमारी आराध्या देवी लक्ष्मी जी है। इन्होंने हमको इस प्रकार से बहता दिया तो हमको अभिमान हो गया, बिना अभिमान गया था। प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैंने बहुत भूख की, मैंने भूख देवी नहीं, हमारी इच्छा थी जगत के जीवों का उद्धार कैसे हो, इसलिए अपनी माया के द्वारा तुम्हारी बुद्धि को मोहित किया अपने भक्तों का नहीं, और तुम्हारी बात को सत्य करने के लिए पृथ्वी में जा रहे। ये सीता जी बनेगी और मैं राम बनूंगा, और जगत के लिए ऐसी मनोहारी विदा करूंगा जो जगत के लोग देकर के मुक्त हो जाएंगे। और भविष्य में भी जब तक ये विश्व की सृष्टि रहेगी तब तक हमारी विदा ये कायम रहेगी, और जो उसे श्रवण करेगा उसे उनका उद्धार होगा। जो कोई मेरी इस लीला को श्रवण करेगा जो राम लीला में हुई, ऐसा कोई भी देखते नहीं जिसका हृदय करुणा रस को भर नहीं जाएगा, जिनके आंखों में एक बूंद भी आंसू आ जाएगी, जिनका चित्त द्रवित होकर सबका फल देगा। ये मूल कारण था, मूल कारण ये कौन था, ये काम क्या समस्त जीव मात्र को कैसे अपने तरफ में आकर्षित करो, अपने नाम में अपनी कथाओं के चिंतन में इस तरह से भगवान राम के रूप में। और भी बहुत से कारण हैं, वाल्मीकि रामायण में और तुलसी कृत रामायण इत्यादि में, आध्यात्म रामायण में ये सब चीजों का वर्णन। राम जगत में प्रधान, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, चार जैसे हमारे अंश काल्पनिक होते हैं उनका अंश ऐसा नहीं, अपनी इच्छा से ही चार रूपों में सत्संग का विदा को ऐसे किया। ये समय में राम अभी लक्ष्मण शत्रुघ्न जी पैदा नहीं हुए थे, उससे पहले
महाराज दशरथ ने तीर्थ सात रानियों के साथ में शादी की। पहले कौशिक रहते हैं उनको कोई बच्चा नहीं हुआ, सुमित्रा जी से हुआ कोई बच्चा नहीं, और भी कितनी 360 रानियों के बाद में किसी को कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। बड़े दुखी हो गए, अवस्था भी किसी चोरी की हुई। पेट और काले कृष्ण दो प्रकार के ये चोरी हो गई थी, मैंने आई अब क्रोध से अब धीरे धीरे ढल देना। देखा जी अभी तक कोई पुत्र नहीं। इसी समय में हटा तुमको कहीं जाना था, वो धीरे 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 करते करते तय तय देश में पहुंचे, हिंदू कुछ को लांग कर उसी के पास में कोई है। आज वर्तमान नाम उसका क्या है मुझे, पहले तो यह था आज कल हो गया, वहां पर पहुंचे। वहां पर राजा इनके मित्र थे, राजा ने बड़ी चीज इसके बाद की, उन्होंने अपनी कन्या को मैंने तय कही को जो सब गुरु से संबंध परम सुंदरी थी, अभी शादी नहीं हुई थी, इनकी सेवा में नहीं देखा। महाराज को कोई किसी प्रकार का प्रश्न हो, पानी इत्यादि भोजन इत्यादि सारी व्यवस्था तुम पर चली जाए तो उनकी व्यवस्था मैंने दी, ऐसी सेवा की थी ये प्रसन्न हो गया और देखने में भी खूबसूरत। उन्होंने चौथित मैंने महाराज से कहा, महाराज आप यदि प्रसन्न हो तो आपको एक चीज मांगना चाहता हूं। चलिए आपकी लड़की परम सुंदरी है, मैं चाहता हूं कि आप इसकी शादी कहीं नहीं कहीं करें नहीं, तो यदि मेरे साथ में कर दें तो मेरा यह अनुरोध है कि आपके साथ में शादी नहीं करें। आप राजा हैं, चक्रवर्ती राजा हैं, किंतु आपके साथ क्यों मैं इसी तक पकड़ सकता हूं, जब हमारे हमारी इस लड़की से जो कोई पुत्र पैदा होगा वो राजा होगा। ये विशेष जी पर बड़े प्रसन्न हुए, अभी हमारे तीन सुसार नहीं है, किसी को भी बच्चा पैदा नहीं हो, यदि इसी बहाने किसी को यदि पुत्र हो जाता है तो हमको यह मान लेने में क्या आपत्ति है। मैंने कहा ये बड़ी खुशी की बात है, तुम्हारी लड़की को कोई बेटा हो तो मैं उसी को राज कर दीजिए। प्रसाद के साथ में वही पर शादी हुई और शादी के बाद में उस लड़की को लेकर अब इसके बाद में बहुत दिनों बाद बीत गए, देवताओं के साथ में असुरों का युद्ध हुआ, यह होते ही रहते अभी भी हो रहे हैं, पहले भी होता है। असुर कौन है, भगवान का जो नहीं मानते हैं, वेदों शास्त्रों को नहीं मानते और अपने भोगों में लगे रहते हैं। मैं आत्मा हूं, भगवान जगत के ये विश्व के सृष्टि करने वाले सबके प्रमुख के प्रभु हैं, ईश्वरों के ईश्वर हैं, उनका भजन करना चाहिए। जो ऐसा जो भजन करते हैं वो तो देवता है, और जो उनको नहीं मानते भगवान को वो पशु है। वो खाने पीने में कोई ड्रिंक टाइम भी मेरी, बस उनका यही प्रिंसिपल है, खाओ पियो मत, चाहे मांस खाओ मछली खाओ गोश्त खाओ चाहे जो कुछ भी खाना है खाओ पियो, ये सब चीज जगत में बनी है हमारे भोजन के लिए ही। आकाश में जितनी चीजें मिलने वाली हैं वो सब खाने के लिए, सिर्फ एक पतंग को छोड़ता और इस जगत में और एरोप्लेन को छोड़ता, बाकी सब हमारे खाने की जो भी होगी जाती तो उसको भी खा ले। और इस पृथ्वी पर जितने भी चार पाए हैं बस एक चारपाई को छोड़ करके बाकी सब उनके खाने के लिए है, वो ऐसा ही कोई भी चीजें जो खाने के लिए बहुत लोग तो नर्वस से खाने लगते हैं, कितने खाते भी होंगे कौन पता, कभी कभी पेपरों में आ जाता है। ये सब अशुभ है, जैसा अपन है सब कुछ प्रकृति से रह सके भगवान को अर्पण करके उसे जो ग्रहण करते हैं और भगवान की पूजा करते हैं आराधना करते हैं वो देवता है। देवताओं में असुरों में छन गई, देवताओं ने महाराज दशरथ को बुलाया, ये जाकर के असुरों से लड़े और उस समय युद्ध में इनका एक अरब का वो जो धुरी होती है चक्के को जो झाड़ करती है वो टूट गई और ये झट टूट गई तो कहते थे उनके साथ में बड़ी बहादुर थी बस उसको अपने हाथों पर उठा लिया और लड़ करके उसने उन्होंने परास्त कर दिया तब जब वो काम हो गया तो रक्त को छोड़ दिया तो ये बड़े प्रसन्न हुए तो बर मांगो बर मांगो बर मांगो दो बार कहा जब निकल गया दो बार मैंने दो बर मांगा उन्होंने कहा जैसे मैं बर मांगने के लिए नहीं आई आपकी ये सेवा तब जब आप जीत पर खड़े हैं तो मैं अपनी धरोहर रख देती हूँ जब इस समय कभी आएगा तो ले लेंगे चले आए बहुत दिन हो गए इतने में महाराज वशिष्ठ की कृपा से और सिंह ऋषि की कृपा से या भगवान खुद लीला करना चाहते हैं उस लीला की दृष्टि से भगवान उनके घर में पैदा हुए जब ये 14-15-16 वर्ष के हो गए तो विश्वामित्र जी के साथ में राम और लक्ष्मण जी जनकपुर गए वहां उनकी शादी हुई शादी होने के बाद में लौटे चार भाइयों की शादी वहां पर जब लौटे अयोध्या में कुछ दिनों के बाद ही में महाराज मैंने भक्त के मामा भक्त को ननिहाल ले गए भक्त के साथ में शत्रुघ्न की जोड़ी और राम के साथ में लक्ष्मण जी की जोड़ी ये दोनों लक्ष्मण जी और
राम
नहीं शत्रुघ्न जी ये दोनों सुमित्रा के एक एक के पास में एक एक बड़ी सुंदर जोड़ी शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी जोड़े भरती और राम जी श्यामले इसमें श्यामले के साथ में दोनों की जोड़ों की जोड़ी बड़ी सुंदर श्याम और गौरी भगवान जी जोड़े कृष्ण जी श्याम कृष्ण जी श्याम ले राधा जी जोड़े राम श्याम और पिताजी जोड़े ये जोड़ी बनी जब वहां से आए भरत और शत्रुघ्न जी तो मामा के यहां चले गए इधर में प्रजाओं ने देखा आराम बड़े हो गए अब दशरथ महाराज को भी काम लेना चाहिए और ये राज्य का संभालना बहुत कठिन है बहुत तीन है बहुत गुणी है प्रजा भत्सल है इसमें ऐसा कोई गुण नहीं जो नाम लेना हो तो क्यों तो अब रिटायर्ड हो जाए महाराज दशरथ और यही राजकाज देखे सभी व्यक्ति जाओ नहीं करते महाराज से निवेदन किया महाराज जी बड़े आज हमारा बेटा इतना योग्य हो गया राज संभालने योग्य हो गया ठीक है मैं कभी अपना राज्यभार सब इसको समझाता फिर युवराज कर दूंगा जब तक राजा जीवित रहेगा हमारी भारतीय परंपरा में वो तो राजा रहेगा मरने के बाद में दूसरा कोई राजा होगा अभी से दूसरा किंतु अपने जीवित काल में वो किसी को युवराज कर देगा राजा एकदम रिटायर्ड होकर के बैठा रहेगा और युवराज ही सब काम करेगा इसलिए क्या ये कभी अब देना है वशिष्ठ जी ने कभी कभी खूब शुभ मुहूर्त है जिस राम का जन्म हुआ था फिर उसी लग्न में इसका राज्याभिषेक भी होने को है
जी रामनवमी
रामनवमी को ये सब जो आ रही है उसी दिन राम का जन्म हुआ उसी दिन राज्याभिषेक होना था भगवान को ये मंजूर नहीं राम को ये मंजूर नहीं क्यों मैं जिस काम के लिए आया वो काम नहीं हो सकेगा और नारद जी की बात भी मिथ्या हो जाएगी और किसी के कारण है इसलिए हमको ऐसा नहीं करना योग माया से उन्होंने भेजा तय कही के फिर नहीं ढूंढ गई वो मंथरा जी के पास में बैठ गई मंथरा ने कहा आज राम की कल में होने वाली है राज्याभिषेक तू घर में बैठी बैठी क्या कर रही है तो बड़ी मूर्ख है रानी पिता है वो बड़ी पसंद भाई अपने बड़े का हार लेकर के मंथरा को दिया तो बड़े का सब फेंक दिया तुझे अरे मूर्ख तो पता नहीं है क्या काम होने वाला अरे कहां कौशल्या राजमाता होगी आप तुम होगी दासी राम होगा राजा भरत होगा उसके ऊपर में छत्र और चमक डूबेंगे और तुम्हारा बेटा कोई छत्र झुलाएगा, तू जाति बनेगी, राजमाता नहीं, तुमको अकल नहीं है, अभी समय नहीं बिगड़ा है। ये सब क्यों हुआ? कहते ही कौशल्या से अपेक्षा राम को क्या करती। कभी बचपन में राम ने राम उनकी गोदी में बैठे थे, बड़ी प्यार करते, भैया एक बात भी देना है तुम्हें, तो तुम सब कुछ दीजिए, जब मेरा राज्य अभिषेक होगा तो तुम ऐसा मान लेना जैसे कि हमारा राज्य अभिषेक न हो। अभी ये तो नहीं मैं कर सकती, तो भैया हमको तुमने दिया क्या? दो कारण है, एक तो राजा की प्रतिज्ञा, हमारे बेटी से ही जो बेटा होगा वही राज को बैठेगा, और दूसरा उन्होंने कहते ही तो पहले ही बचपन में ही ये बर मांगा था, मैया तुम हमको देना है, हम विशेष कारण से हम आए हैं। अंत में राम के बहुत कहने पर वो मान लिया, अच्छा तो ठीक है ऐसा ही, इसलिए उसने राजा से दो बर मांगे। राजा एकदम सब कुछ तैयारी हो गई, अभी राज्य अभिषेक कल होगा, शुभ मुहूर्त में होगा, जब ये सब चीजें तैयार हो रही है चाहे इतने में महाराज के पास में पहुंचे थे। याद है तीन प्रतिज्ञाएं जो पिताजी के यहां हमसे क्या, मैं बर मांगती हूं पहले बर में रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए बन जाए और दूसरे घर में भक्त को राज्य दिया जाए। आखिर भक्त को भी राज्य दिए या पहला
राज्य
और दूसरे में रामचंद्र जी को 14 वर्ष के लिए बनवा दिया। राजा के सिर पर मानो वज्र पड़ा, ऐसा कुछ क्यों करते बहुत समझाए नहीं मानी। ये किस लिए हुआ? लोग कैकई को देख देते हैं, इसमें कैकई का दोष है या किसका दोष? जो माया जान बुझ करके ऐसी लीला करा रही है, ऐसी ही लीला होती है जो उसका रहस्य हम लोग नहीं समझ पाते हैं, और रहस्य यदि मालूम हो जाता तो नारद की तरफ में हो जाए, इसलिए रहस्य हम लोगों को पता नहीं होता, इसलिए हम लोग कैकई को दोष देते हैं कि कैकई को दोष देते। यदि हमको कोई एक छप्पर मारता है तो इसमें दोष किसका है? किसका?
जिसने थप्पड़ खाया,
जो थप्पड़ खाया उसका दोष है, उसने ऐसे कर्म किए हैं जिसका ये इसको फल प्राप्त है, दूसरे जन्म में ऐसा कर्म किया। कोई भी कर्म हम करते हैं उसकी जरूर कुछ रिएक्शन होगा, इसे हम जो किसी जीवन में पाए हैं सुख या दुख, इसका मूल कारण हम खुद हैं, दूसरा नहीं है, इस चीज को समझने पर कोई क्रोध नहीं होगा, उसका कोई कर्म नहीं होगा, वो भगवान के तरफ में आगे बढ़ जाएगा। माया इस चीज को सब सत्य रखती है,
ढक देती हूँ
कभी, इसने हमको गाली दी, इसने हमको मारा, इसने हमको अपमान किया, इसके वजह से हमको ये काम नहीं मिला, किंतु ये सब चीजें गलत है, अपना कर्म ही इसके लिए दायी है। हम समझ नहीं पाते हैं माया, भक्त लोग इसको समझ लेते हैं, इससे इसमें कोई भी नानो नटू कहीं नहीं करते, उसको जिस रूप में आता है उस रूप में ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए हम लोग भी ऐसा ही करेंगे। जब शरीर मिला है ये प्रारब्ध का, तो इसमें कर्म में ये लिखा है जैसे तुमको ये दुख होगा या सुख होगा, उसी संसार में सब कुछ मिल रहा है, सब करके भोगो या रो करके भोगो, तुमको वो करना पड़ेगा, क्योंकि जो भगवान के भक्त हैं वो ऐसे होते हैं भगवान के नाम के प्रभाव से, भक्ति के प्रभाव से कर्म के प्रेम को एकदम बिता देते हैं, शक्ति है। तभी भगवान उनकी सिद्धि प्राप्ति करने के लिए, साधन को पूरा कराने के लिए कुछ जान बुझ करके दुखों का सृजन करता है, जिसे वो दिन दिन बने रहे। द्रौपदी का आशीर्हरण ये कर्म के लिए नहीं है, प्रारब्ध नहीं, वो तो भगवान अभिनय करने के लिए अपने भक्त, प्रहलाद महाराज के ऊपर जो कष्ट हुए उनके पूर्व जन्मों का ये कर्म का फल नहीं है, वो तो भगवान की लीला करते हैं, वो जगत को शिक्षा देने के लिए ऐसा करते हैं, उन्होंने तो पिताजी से कुछ ही नहीं कहा, पिताजी हमको आप कौन मारा है, बीच किस लिए दे रहे, आदमी किस लिए जला रहे हैं, किस लिए, ये भी नहीं पूछा। हम रहते तो पूछ लेते थे और नहीं तो पिताजी को ही दे देते थे। पिता एक देगा तो हम दो, पिता एक करेंगे तो हम दो करेंगे। आदर्श प्रहलाद महाराज जी का लेना चाहिए, इतना दुख होने पर भी उनसे कुछ भी प्रतिकार नहीं। अब चले हम लोग रामलीला में, अब राज्याभिषेक होने को और उसमें विघ्न पड़ गया। कभी हमें मर जाऊं ना तो मर जाऊं कोई बात नहीं, मैं अपने बात को लौटा नहीं सकती। उसमें किसी तरह से रामचंद्र जी का वनवास हुआ, ये सब तो आप ही जानते हैं। वनवास के समय में सब कर्म दृष्टि पर सकते उस समय में सीता जी को, राम को और लक्ष्मण जी को बन के ये सब कपड़े दिए जा रहे हैं। राम लक्ष्मण को देने के बाद में सीता जी को भी दिया जाने लगा, के कई दे रहे अपने हाथों से। बच्चे ने कहा जी इसके लिए तुमने वरदान बना रहे, इसके लिए वरदान नहीं बना, फिर इसको कौन इस प्रकार का बनता है। इसके साथ में हाथी घोड़े महाराज घर है दशर, इसके साथ पूरी इसके नाई जाएगी और समस्त खजाना जाएगा, कोर्ट जाएगा सभी कुछ इसके साथ। अब वो घबरा गई, राम से गुरु जी से सच करते कैसा होगा तब ऐसा सुन महाराज जी में क्यों मिलेगा क्यों नहीं। राम कह नहीं नहीं ये सब कुछ ठीक रहेगा, हम लोग बनवास की सारी गुरु बनवास अपने हाथों से लेकर के तीर और बच्चों को पहना। सारे लोग रोने लग गए, सारी अयोध्या उनके पीछे पीछे चल रहे। अब इतने में ये तो चले गए और रामचंद्र जी हा राम हा राम दशरथ हा राम था तीसरी बार हा राम मर गए चले गए सभी को छोड़ दिया। बस जी को संवाद किया, बस किया और सशस्त्र जी अपने निहाल से पहुंचे। सारी अयोध्या विधवा हो रही, कहीं कोई उल्लास नहीं, चारों तरफ गंदगी। एक आदमी भी उनके अजवानी के लिए नहीं आया, क्योंकि क्या बात हो गई। देखा जैसे पशु पक्षी भी रो रहे हैं, आदमी भी रो रहे हैं और सभी उनके तरफ में कुछ क्रोधित होकर के देख रहे हैं। यही कारण है राम का बनवास का, वो तो लीला में प्रवेश नहीं कर सकते। यही कारण है, इसी के लिए इसको बर्बाद हुआ राम कोई भी नहीं है। मंथरा केवल और उसकी मैया तय कई अपने भवन में खड़ी थी, उनके साथ कोई नहीं, मैया केवल खड़ी है और मंथरा। अब बड़ी सर्जक करके मंथरा आज तो बहुत श्रृंगार कर रखी है चुगड़ी देख करके। उन्होंने कहा कि भैया कहाँ गए, पहले पिताजी पिताजी मेरे लिए तो गांव से बाहर अयोध्यापुर से बाहर याद करके हमारे लिए आजमानी करते थे, अपनी गोदी में ले लेते, बड़े स्नेह करते, आंसू जो उन्होंने हमारे सिर पर उठा देते। आज पिताजी कहाँ गए, तो वो तो मर गए। कैसे मर गए हटात, अब तो मैंने बर मांगा था तेरे लिए बेटा, जब तू राजा बन जा और भक्त आराम और तो 14 वर्ष के लिए बनता है, अंत बड़ी भारी जाइन है तो मेरी मैया नहीं, मैं आज तुम्हें तो खत्म कर देता। किंतु किस ये नहीं मानता कि राम को यदि पता लग जाए कि मैंने किसी की मैया के ऊपर में हाथ उठाया है तो सजा के लिए सब क्या कर देंगे, ये व्यक्ति ये नहीं मानता। जाओ आज से तुम्हारा माता और पिता बेटा का रिलेशन सब आप, और कभी भी जीवन में तुम्हें मैया नहीं कहूंगा और तुम हमको बेटा मत सिखाना, तुम्हारे साथ कहने पर भी हम इस रिलेशन को संबंध को सदा के लिए जाके प्रिय न राम उदय दे, जाके प्रिय न राम उदय दे। सगन पिता प्रहलाद भीषण दंत भर समाता दंगन सगम कंत प्रचलितन वह जगम गलता जाके प्रिय न राम उदय दे। सभी को बैरी समय जब तक परमाशन यदि अत्यंत प्रिय कोई भी व्यक्ति हो जिसकी सीताराम का और राधा कृष्ण का यदि विरोधी है मैं उसका मुख नहीं देती उनको बैठ के समान छोटी बैठ के समान तत्व सब क्या कर दो ये सबके लिए था यदि कोई राधा कहती है और सीता में या भगवान में प्रेम चाहता है तो उनके विरोधी को क्या करना चाहिए जो उनकी निंदा करता है जो भजन नहीं करता ऐसे लोगों को खुद बैरी के समान सब क्या करना सजो पिता प्रहलाद प्रहलाद जी ने अपने पिता को क्या कर दिया सजो पिता प्रहलाद भीषण बंधु भीषण ने अपने भाई को और भरत महाराज भरत जी ने अपनी मैया को बलि गुरु सजो बलि ने अपने गुरु को छोड़ दिया और गोपियों ने अपने कांत अपने पति को भी प्रत्याग कर दिया किसके के लिए है जगह मंगल का जिसमें मंगल में मंगल हुआ इस प्रकार से हम आज तक जितने भी देखते हैं मीराबाई को भी 500 वर्ष पहले देखिए उन्होंने अपने पति घर सब को छोड़ दिया आज जगत में सबक लोगों को दिया कृष्ण ही एकमात्र पुत्र है कृष्ण ही एकमात्र पति है कृष्ण ही हमारे सर्वस्व है वही हमारे सखा है इन्हीं से हमारा देश है इसमें जो बाधा आएगा ऐसा पापा तो मैंने माता जी को प्रत्याग कर दिया अगर जब तक राम को लेकर के नहीं आऊंगा और मैं जल ग्रहण नहीं करूंगा पहले पिताजी के लिए साध किया उनके लिए अर्पण किए और इसके बाद समस्त प्रजाओं को लेकर महाराज वशिष्ठ से लेकर के जितने गुरुजन है माताएं कौशल्या और सुमित्रा और जितने प्रजाएं थी उनके पीछे से परिचय एक के लिए आदेश नहीं दिया कौन कैकई के लिए महारानी कैकई के लिए ये कौशल्या के चरण में जाकर तेजी के लिए और बनी हमने बहुत बढ़ाई ज्ञान है मैंने सोचा जब हमारा पुत्र इससे प्रसन्न होगा नहीं हमारी गलती थी मैं सुधार सकती हूँ अब तुम हमारी बड़ी बहन है और बड़े पर मैं करना करो मैं भी वक्त के साथ से राम को मनाने के लिए जाता था और पहले राम को जाकर के कहूँ कि मैं अपना ये जो वक्त से लिया था मैं और आपको बन के लिए भेजा था मैं वापस ले लूँ मैं पहले कहूँगा इसके बाद में सबसे कुछ कहेगा उसे ले गई सही उन्होंने कहा ठीक है तो भक्त आदेश नहीं दे रहा वो हमको मैया नहीं चाहता अच्छा तो मैं आदेश लेती हूँ तुम चलो हमारे उनको भी कहा चले तो रवि चतुर्थ में पहुंचे ये भरत जी सोच रहे हैं मैं कैसे क्यों गुरु जी के पास नहीं गुरु जी आपकी बात हमारे भाई साहब नहीं आप यदि आदेश दे दिया तुम राज्य ले लो अब भरत तुम्हारा सेवक की फांसी रहेगा तो तुम्हारी बात आपकी बात को रख सकते हैं मैं कैसे कहूँ अच्छा क्यों नहीं कर सकते मैं ये बात कुछ अन्याय कारण यह राज्य तुम भी चाहे वो बड़े भाई हैं बात तो तुम ठीक करते हो किंतु राम की भी तो कुछ बात है उसको भी तो सुनना चाहिए वो पिता के आज्ञा को पालन करने के लिए जा रहा है मैं कैसे कहूँ कि अपने पिता की आज्ञा पालन नहीं करूँ और मैं तुमको कैसे कहूँ क्योंकि मुझको न्यूट्रल रहने रात में मैया कौशल्या के पास में गए बहुत रोने मैया तुम ही मेरी मैया है कहते मेरी मैया नहीं मैंने पीछे ही अपनी बात समझा राम को अपना बड़ा भाई समझा मैंने क्या अन्याय किया मैंने तो कुछ किया नहीं इसे मैं सोचता नहीं कि राम को तुम समझा दो जो भक्ति बात मान लो और अयोध्या में लौटा उनके बिना अयोध्या कोई तुम सबके भी कुछ नहीं जनता तो मैया तो बोलती क्यों नहीं मैं अन्याय का राम नहीं रहता तुम्हारे अन्याय नहीं था तो फिर तुम ये बात को राम कृष्ण नहीं कर सकती तुम्हारे आदेश उल्लंघन नहीं कर सकते मेरे साथ बेटा कैसे कर सकते कोई भी धर्म की मर्यादा हो ये हिमालय की पहाड़ की भांति है। तुम भक्ति की भक्ति का समुद्र हो और आम क्या है धर्म की मर्यादा के हिमालय की समान है। मैं तुमसे कैसे कहूँ जरा तुम्हारी बात मान करके और योजना का राजा बन जाए मैं नहीं कह सकती तो नहीं कह सकता। तू अपने प्रतिज्ञा पर अटल है और तुम अपनी प्रतिज्ञा पर अटल है। मैं देखता हूँ कि तुम ही सत्यकार है जब उसी तरह मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यही सत्यकार है नहीं वो सदा जी फिर उन्होंने सुनने को कहा सुनने को उन्होंने भी कहते करके सारा जनक आया
जनक की पत्नी
उसी का भी नहीं है उसके पास नहीं गई बोले जिसमें मेरी भैया है सात से लगती है तुम नहीं है तुम जो है बात या जनक से कहते उनकी बात से काम नहीं करते वो जाता तो उनको कहने अब जो कुछ भगवान कहेंगे अब कौन सा बड़े देखा जाएगा जाकर के कुछ कहते हो महाराज घर से नींद नहीं आया तो रोला हुआ रोला नहीं आ गया आज ऋषि होते आश्रम में कुछ रूप में बड़ी घर की सभा होती है उसमें ऋषि महत्व बड़ी घर ज्ञान इत्यादि कराएंगे और उसमें महाराज गलत नहीं आएंगे उसमें देवता ले जाएंगे ऋषि महत्व कर ले जाएंगे हराम इत्यादि भी इसमें आएंगे भक्त भी आएगा कुछ न भक्त भी अपनी तरफ सामना करेंगे और जैसे आए उसमें निर्णय किया जाएगा हराम चंद्र जी लौटे